क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से क्षितिज कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को अश्विना का करजोर अभिवादन। आज हमारे मध्य में केन्या से विराजे हैं श्री अभिजीत गुप्ता जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद अश्विना जी।
आप केन भारती सेंटर के अध्यक्ष हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो 23 जुलाई को जो विश्व हिंदी सचिवालय के सभागार में चला, उसमें भाग लेने के लिए मॉरिशस पधारे हुए हैं।
जी।
अभिजीत जी, स्टूडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। कृपया आप हमें अपने बारे में तथा हमारे श्रोताओं को भी और मुझे भी बताइए, कुछ सुनाइए अपने बारे में।
बहुत बहुत धन्यवाद। और MBC के इस कार्यक्रम में, जो कि विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा आयोजित किया गया है, आकर बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के केन्या गणराज्य से ताल्लुक़ रखता हूँ।
अच्छा
जी। वहाँ पर कई वर्षों से हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। मूलतः जन्म तो मेरा भारत में हुआ, पर आने वाली पीढ़ी तो केन्या में ही जन्मी है। केन्या का नागरिक होते हुए यहाँ पर आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं निजी स्तर पर बात करूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके अलावा मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है।
अच्छा।
और स्टील के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, पर सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर ही पहचान स्थापित करने का प्रयास किया है। सामाजिक स्तर पर कई कार्यकाज हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे फिर वो केन भारती सेंटर हो, या फिर रोटरी क्लब हो, या फिर जायंट्स क्लब हो, या फिर यूनाइटेड एशियन नेटवर्क हो, या फिर मेरी जो सामाजिक सेवाएं केन्या सरकार को दी जा रही है, वहाँ के एक विद्यालय के बोर्ड का मैं चेयरमैन भी हूँ। और इसके अलावा जो हमारा नैरोबी, जो हमारी राजधानी है, उसमें भी मैं काफ़ी सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय है।
आप तो चारों ओर फैले हुए हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सीमित नहीं है आपका व्यवसाय एक तरफ है, फिर आप चारों ओर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। बहुत सुंदर, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भाग आपने लिया, आपको कैसा लगा?
अगर ये कहूँ कि अप्रतिम, अद्भुत और बिल्कुल विस्मय कर देने वाला अनुभव रहा, तो अतिशयोक्ति न होगी। एक से बढ़कर एक कविगण वहाँ पर थे, और विशेष रूप से जो मॉरिशस मूल के जो कवि हैं, चाहे फिर वो धनराज शंभू हों या शशि दुक्कन हों, या फिर बहुत बड़ी जो फहरिस्त थी, उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। देखिए, भारत में रहकर या भारतीय परिवेश में पल बढ़कर, क्योंकि आप हिंदी भाषा रोज की भाषा होती है, उसमें आप संवाद करते हैं, तो लिख पाना आसान हो जाता है, एक माहौल बनता है, और जो आपको एक्सपोजर में मिलता है, बहुत सारे कवियों का सानिध्य मिलता है। पर मॉरिशस में रहकर, जहाँ पर कि क्रेओल या फ्रेंच
बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं,
और वहाँ पर हिंदी हालांकि बोली जाती है, पर शैक्षणिक स्तर पर हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और वहाँ पर हिंदी साहित्य में इतना अच्छा कार्य करना एक बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल।
तो
बिल्कुल।
मैं विश्व हिंदी सचिवालय का को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मॉरिशस के कवियों को वहाँ पर प्रस्तुत किया। विशेष रूप से कवि सम्मेलन में जो बच्चों की उपस्थिति थी, भारतवर्ष के, नेपाल के, श्रीलंका के, और अनेक देशों के जो बच्चे आए और उन्होंने अपनी कविताएं प्रस्तुत करी, उसने हमें आत्म विभूत कर दिया।
बिल्कुल
बिल्कुल, मन प्रसन्न हो गया और भावनाओं में हम बह गए कि इतना अधिक हिंदी का प्रचार प्रसार अगर इस युवा स्तर पर है तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। एक बार फिर से कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव राम माधुरी राम धारी जी को और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद, आपने जो भाग लिया। आपने कहा हिंदी चारों ओर फैली हुई है, हिंदी केवल भारत में नहीं बोली जाती, जहाँ जहाँ हिंदू लोग बसे हैं भारत से आकर चारों ओर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। कैसे आप केन्या में कर रहे हैं, हम यहाँ मॉरिशस में कर रहे हैं, चारों ओर हिंदी का प्रसार हो रहा है।
बिल्कुल
बिल्कुल।
और देखिए आपको भी शायद मालूम है कि हिंदी भारत की तीसरी विश्व की तीसरी या चौथी नंबर पे जो है सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। और इसलिए नहीं कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से हम उसको कहेंगे, अनेक देशों में आपका देश है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, टोबैको है, इतनी सारे जो देश हैं, सूरीनाम है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और मैं मॉरिशस में पहले भी आ चुका हूँ विश्व हिंदी सम्मेलन में भी और जो विश्व रंग के कार्यक्रम में उसमें भी, और मैंने देखा है कि हिंदी एक बहुत ही एडॉप्टेड लैंग्वेज बनती जा रही है।
हाँ,
जो कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।
बिल्कुल प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम सब बोलने की कोशिश करते हैं, केवल स्कूलों में, पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में नहीं, बल्कि हम ऐसे भी अपने बच्चों से बोलते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो हम हिंदी में बातचीत करते हैं
जी।
तो इसीलिए हिंदी का प्रसार हो रहा है।
बिल्कुल।
आप रेडियो के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करती हैं। 20 सालों से केन्या के सदाबहार गीत चलते चलाते हर रविवार को आप प्रसारित करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
बिल्कुल, आपने तो मेरे मन के तारों को छू दिया। यूं कह लें कि देखिए जीवन में झनझना गए। देखिए ये सब गतिविधियां अपनी जगह हैं, पर एक कुछ ऐसा होता है शौक या कुछ एक ऐसा आपके जीवन में एक यूँ कहें कि आपका लक्ष्य होता है कि आप उसे करना चाहें और उसको आपको मन सुलभ होता है
जी।
तो रेडियो जो है उस माहौल में मैं पला बड़ा था, माता पिता दोनों रेडियो से जुड़े हुए थे। और जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था उस दौरान भी मैं 2 सालों तक मैंने आकाशवाणी के माध्यम से युवा वाणी जो कार्यक्रम है वो करता था।
अच्छा।
तो कहीं ना कहीं कसक रह गई थी कि उस कार्य को करना चाहिए। जब मैं अपने जीवन में थोड़ा सेटल हो पाया तो 20 नहीं अब लगभग 23 साल हो चुके हैं, 23 साल से शौकियाना तौर पे यूं कह लें हर रविवार को साउंड एशिया 88 FM नैरोबी, 89.9 एट द कोस्ट यानी कि मुंबासा पर मैं 3 घंटे का लाइव कार्यक्रम देता हूं जिसका नाम है चलते चलाते।
ये तो बहुत बढ़िया बात है।
जी,
बहुत सुंदर।
और टैग लाइन्स मैं बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि चलते चलाते जहां सब कुछ होता है, हंसते मुस्कुराते नाम अभिजीत सुनाते हैं आपको बहुत प्यारे और मीठे मीठे गीत।
तो बहुत सुंदर।
और वही क्रम होता है, देखिए उसमें किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार, मन्ना डे, जो पुराने गाने हैं, अनसुने गाने, सदाबहार गीत हैं उनको बजाता हूँ। बीच बीच में मैं हिंदी में ही पूरा कार्यक्रम करता हूँ, बीच में हिंदी के कुछ चुटकुले होते हैं, कविताएं होती हैं। और मेरा प्रयास यह होता है कि मैं बहुत क्लिष्ट हिंदी भाषा का उपयोग ना करूं, हालांकि जो मेरा पृष्ठभूमि है बहुत हिंदी साहित्य के क्षेत्र की है, पर चूंकि मैं हिंदी का प्रसारक हूं तो मैं बहुत ही सामान्य हिंदी भाषा में बात करता हूं
ताकि सब लोग समझ
हाँ। सकें, जो गुजराती मूल के वहां के वासी हैं वो समझ सकें। और कई बार मैं उनको राइमिंग टास्क देता हूँ
हाँ।
और ताकि वो हिंदी हाँ। जैसे कि अगर एग्जाम्पल कहें कि भारत न्यारा है, आगे की लाइन आप पूरा,
की लाइन आप पूरा तो कीजिए,
भला ही तुक बंदी हो हाँ। तो बोलेंगे केनिया भी हमें दिल से प्यारा है
हाँ।
या भारत न्यारा है
हाँ। बोलते जाएंगे
कि हमें हाँ। तो MBC पे आना ऐसा लगता हाँ। है कि हमें अश्विनी जी ने दुलारा है कुछ भी इस तरह से जो लाइमिंग भाई उसका अर्थ बहुत गुड़ ना हो पर वो मजबूर तो हो जाए
कि कुछ
हिंदी के लिए हिंदी में लिखने के लिए
हिंदी शब्द बोले हिंदी शब्द का प्रयोग करे वाक्यों में बोले
बिल्कुल वही लक्ष्य होता है।
बहुत सुंदर। तो इसी माध्यम से आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं
जी, जी,
सभी लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं
जी,
ये तो बहुत अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात
बहुत
है,
बहुत धन्यवाद,
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर हमने सुना है कि आप लोहे कंपनी से भी जुड़े हुए हैं
जी 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 जी,
इसके बारे में भी कुछ बताइए सुनाइए हमें।
सामान्यतः मैं अपने व्यवसाय मतलब इस क्षेत्र के बारे में बातें कम करता हूँ पर ऐसा नहीं है, काफी उपलब्धियों भरा एक करियर रहा है। और देखिए जो रूफिंग शीट्स होती हैं वो और जो स्टील के सेक्शंस और पाइप्स होते हैं तो लोहे का व्यवसाय सामान्यतः जो होता है उससे हम जुड़े हुए हैं। और पूरे ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ
इंजीनियर जो है
इंजीनियर की वजह से। और देखिए समय तो निकालना होता है, कार्य अपनी जगह है, काम अपनी जगह
है, बिल्कुल कार्य अपनी जगह है, फिर इधर सामाजिक कार्य ये अलग अपनी जगह है,
बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपका शौक अलग है,
शौक अलग है, तो उसी के साथ बस जुड़े रहते हैं। जब भी समय मिलता है कुछ लिख लेते हैं, जब भी समय मिलता है यदि मैं केनिया में हूँ तो मैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम जरूर जरूर से करता हूँ, और यदि कार्य की आवश्यकता है तो फिर उस दिन आप तो रेडियो में ही आप जानती हैं उस दिन हम प्ले ऑफ मोड पे लगा देते हैं
हाँ,
कुछ
हाँ,
हमारे पूर्व रिकॉर्डेड कार्यक्रम है वो चल
वही
जाते
चल जाती है। बहुत अच्छा। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी आप कवि हैं, कविताएं लिख लेते हैं, ये कैसे निकाल लेते हैं, कैसे समय निकाल लेते हैं?
देखिए होता यह है कि मैं बहुत ही प्रबल समर्थक हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक कला होती है,
बिल्कुल कहा,
हर एक इंसान
सचमुच
चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो या किसी भी तरीके के व्यक्ति हो,
एक कला छुपी हुई होती है
हाँ, चाहे बागवानी
हो कोई भी हो, नाई हो, धोबी हो, दर्जी हो, कोई भी हो, एक कला छिपी होती है कहीं पर एक कोने में,
बिल्कुल सही बोला आपने। और उस कला को नरिश करना ये हमारा कर्तव्य होता है, ईश्वर ने हमें जीवन में भेजा है कि कुछ हम करके जाएं। देखिए सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग परिवार व्यवसाय अपना सब कुछ होता रहता है, पर आपने इस संसार में अपनी क्या छाप छोड़ी, आपने क्या किया, और वो जो कला ईश्वर इसीलिए आपको देता है, तो आपका ये परम कर्तव्य होता है कि आप उस कला को
उभारें,
उसके पीछे लगें, ये नहीं कि उसको छुपाए रखें। और हम किसी दूसरे को अप्राय ये होता है कि हम दोष दे देते हैं, अरे भाई मेरे को तो ये काम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए वो कला को उभारना बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी कविता आप सुना दीजिए, या तो कविता या चुटकुला, कोई भी कुछ भी।
चलिए हम चुटकुला सुना देते हैं क्योंकि और देखिए इसमें हिंदी भाषा का मजाक ना समझें, ये बहुत हिंदी भाषा का मैं सबसे बड़ा प्रचारक हूँ, पर देखिए कई बार जो मैं अभी बात कर रहा था क्लिष्ट भाषा की उसके संदर्भ में मैं कुछ आपको बताता हूँ।
बिल्कुल।
तो देखिए एक हिंदी के प्रोफेसर साहब थे और वो जा रहे थे और साइकिल पे थे। अब देखिए हिंदी से जुड़े रहते हैं तो साइकिल जमीन से जुड़े व्यक्ति होते हैं, तो अब उनकी साइकिल के जो टायर है उसमें हवा कम हो गई, तो बाहर वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा बालक बैठा हुआ था। आप जानते हैं भारत के क्षेत्रों में छोटे छोटे से बालक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बेचारे श्रमिक का कार्य करते हैं, एक्सपोजर बहुत कम होता है,
तो उससे
जी जी तो उनकी हवा उन्हें भरवानी थी, तो उन्होंने कहा हे बालक, पहले तो उन्हें समझ नहीं आया बालक यानी हे बालक, क्यों अधिकतर लोग बड़े ही बुरे नामों से उन्हें बोलते हैं, हे बालक मेरी द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र के चक्के को निकाल कर उसमें अपनी लिपलिपी लगाकर अपने पवन ठूसक के अंतर से थोड़ी सी पवन का समावेश करा दे तो मैं तेरा अत्यंत आभारी रहूंगा।
हे भगवान,
आपको भी नहीं समझ में आया ना?
नहीं मुझे समझ में आया, लेकिन वह बालक पता नहीं समझ सका होगा या नहीं।
फिर वापस उन्होंने कहा कि हे बालक मेरी द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र के चक्के को निकालकर उसमें अपने लिपटीपी लगाकर अपने पवन ठोस केंद्र से थोड़ी सी पवन का समावेश करा दे तो मैं तेरा अत्यंत आभारी रहूंगा। उन्होंने उसे कहा, बालक ने ऊपर देखा, अरे दिखते तो बड़े हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हैं शर्म नहीं आती, चलो आगे जाना।
हे भगवान, लेकिन शब्दों का देखिए कैसा हेर फेर रहा। तो अभिजीत जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोतागणों को भी बहुत अच्छा लगा हो मैं जानती हूँ। तो आशा है कि हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही बातचीत लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही फिर से मजाक करते रहेंगे।
बिल्कुल, जय भारत, जय मॉरिशस और जय केन्या।
जय केन्या। हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त कर रहे हैं। जाते जाते हम डोमिनिक जी को भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया।
बिल्कुल,
तो श्रोतागण धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते।
नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।